भाईजान, इनायत बाजी कह रही हैं कि वो सो रही है, वो आपसे डरती है, इसलिए सोते हुए बात नहीं कर सकती हैं। नूर ने इतनी मासूमियत से ये कहा कि इनायत की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वो यहां से कहीं दूर भाग जाए। काश यहां पर कोई छुपा हुआ दरवाजा होता जिसके बारे में इनायत को पता चल जाता, तो वो उस दरवाजे से निकलकर दुनिया के ऐसे कोने में चली जाती जहां पर रियाज इस वक्त तो उस तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि इस वक्त इनायत इतनी डरी हुई थी जितनी तो वो रियाज के सामने भी नहीं डरती थी। सामने से रियाज ने नूर को फोन पर कुछ कहा तो नूर हां में सर हिलाते हुए कहती है, ठीक है भाईजान। नूर ने फोन को अपने कान से हटाकर उसका स्पीकर ऑन किया और बेड पर रखते हुए वो कमरे से बाहर चली जाती है और जाते वक्त कमरा भी बंद कर देती है। क्या चालाक बच्ची है। नूर तो कमरे से चली गई थी लेकिन इनायत की डरी हुई नजरें मोबाइल को देख रही थी जिसमें इस वक्त रियाज का नंबर फ्लैश हो रहा था और कॉल चल रही थी। स्पीकर ऑन था तभी रियाज की गहरी और भारी आवाज इनायत को अपने कानों में सुनाई देती है, जान फोन उठाओ। इनायत का दिल थक सा रह जाता है। वो सहमी हुई नजरों से फोन को देखती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कॉल डिस्कनेक्ट करने की। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से फोन उठाया। उसने सबसे पहले स्पीकर ऑफ किया और फोन को कान से लगाते हुए उसने रियाज से बात की। अस्सलामु अलैकुम, इनायत ने धीरे से रियाज को ग्रीट करते हुए कहा तो सामने से रियाज ने भी इनायत को ग्रीट किया। वालेकुम अस्सलाम, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन? आपने फोन किया? मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सो रही थी, इनायत ने साफ तौर पर झूठ कहा लेकिन उसके झूठ में भी एक मासूमियत थी। उसे लगा शायद रियाज को इस बारे में पता नहीं चलेगा लेकिन उसे क्या पता था कि रियाज को उसकी हर हरकत का पहले से ही पता था। रियाज ने इनायत को फोन पर कहा, ओ अच्छा तो तुम सो रही थी, तो क्या तुम बस नूर को ये बताने के लिए जगी थी कि मैं एक एनिमल हूं? इनायत की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जल्दी से कहती है, एनिमल? कौन एनिमल? कैसा एनिमल? नहीं नहीं, मैंने एनिमल नहीं कहा था, मैंने कहा था हॉट एंड कूल। वो तो शायद नूर ने ही कुछ गलत सुन लिया होगा। इनायत पूरी तरह से हकला रही थी, उसका एक भी शब्द ठीक से नहीं निकल रहा था और उसके इस तरीके से हकलाने पर और झूठ बोलने पर रियाज के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। जब इनायत ने अपनी बात पूरी कर ली तो एक मिनट का मौन लेने के बाद रियाज ने इनायत से कहा, मुझे झूठ पसंद नहीं है, इसीलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत किया करो जान। तुम जानती हो तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है। पर रियाज की बातों से इनायत का डर और गहरा हो गया था। उसे पता चल गया था कि रियाज को पता चल गया है कि वो झूठ बोल रही है। इनायत ने बहुत ही मासूमियत भरी आवाज में कहा, सॉरी मुझसे गलती हो गई है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रियाज ने बहुत ही आराम से कहा, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, नूर अभी बच्ची है, उसे जो कहोगी वो वही सीखेगी। जी मैं समझ गई, इनायत ने धीरे से कहा। तो रियाज ने उसे आराम से बात करते हुए पूछा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नूर के साथ कमरे में थी, वो ड्राइंग बना रही थी और मैं उसके साथ बैठी थी, इनायत ने भी आराम से जवाब दिया। तो रियाज आगे कहता है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? रियाज ने आगे अपना सवाल किया तो इनायत ने भी आराम से उससे कहा, बाकी सब शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। इनायत का मन नहीं था रियाज से बात करने का लेकिन वो इस समय उसका फोन काट नहीं सकती थी वरना रियाज नाराज हो जाएगा। इनायत तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, उसे ये शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी, वो किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन आसपास मौजूद उसके जितने भी लोग और अपने हैं वो सब इस शादी से इतना खुश थे कि इनायत हिम्मत कर भी किसी के सामने अपनी दिल की बात नहीं कह सकती थी कि वो सिर्फ जिब्रान से प्यार करती है और वो जिब्रान के साथ शादी करना चाहती है। रियाज ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर इनायत से कहा, चाची से कहना कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे और मेरी शादी में पहनने के लिए कपड़े मैं खुद डिसाइड करूंगा। मैं चाहता हूं कि उस दिन तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगो और मेरी दुल्हन को देखकर दुनिया वाले बेहोश हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनाना चाहता हूं। क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूं? इनायत ने डरते हुए कहा। दरअसल वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी लेकिन ना जाने क्यों उसकी जबान अपने आप ये शब्द कह गई और उसने आखिरकार रियाज से ये कह ही दिया। रियाज पहले तो हैरान होता है और फिर इनायत से कहता है, बोलो ना तुम्हें क्या कहना है। इनायत ने अपने अंदर एक साहस को बटोरा, अपनी बची हुई हिम्मत को उसने एक साथ अपनी जबान तक कायम किया और फिर रियाज से कहने लगी, शादी नहीं करनी है। आखिरकार इनायत ने अपने दिल में छुपे हुई इस बात को अपनी जबान पर ला ही दिया लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि ये चंद शब्द कहने के लिए उसने अपने आप को कितनी हिम्मत दी थी। उसने तो सोच लिया था कि जब रियाज वापस आएगा तो वो उसके पैरों में गिर जाएगी कि वो उसकी आज़ादी को उससे ना छीने और उसे यहां से जाने दे। वो उसके सामने अपनी आजादी के लिए भी भीख मांगने के लिए भी तैयार थी, बस वो इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहती थी। वो बस उससे तलाक चाहती थी और इस दुनिया से बाहर निकलना चाहती थी। उसे मालूम था ये आसान नहीं होगा, लेकिन वो कोशिश तो कर सकती थी ना। उसे पता है कि इसका अंजाम मौत हो सकती है और वो आग से खेल रही है। वो अपनी आजादी के बदले अपनी जिंदगी का सौदा कर रही थी। लेकिन अपनी बात कहने के बाद भी इनायत को रियाज की तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। रियाज ने कुछ नहीं कहा, उसने फोन पर एक शब्द नहीं कहा, उसके कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंची। एक चुपचाप और भयंकर खामोशी दोनों तरफ पसरी हुई थी। रियाज को कुछ न कहता देख इनायत ने फिर से उससे कहा, प्लीज शादी को रोक दीजिए, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, उसने डरते हुए लेकिन एक उम्मीद के साथ रियाज से ये कहा था। एक लंबी खामोशी के बाद आखिरकार रियाज ने इनायत से कहा, तुम जहां भी जाओगी मेरे नाम के साथ जाओगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम हमेशा मेरी रहोगी, मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा। बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके इस सच को मान लो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। तुम मेरी कैद से कभी नहीं निकल सकती हो, तुम हमेशा मेरी बीवी बनकर मेरे साथ रहोगी। लेकिन हाँ, इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास। याद है मैंने तुम्हारे घर पर तुम्हें एक और ऑप्शन दिया था, तुम चाहो तो उसे आजमा सकती हो। इनायत को याद आता है कि रियाज ने उसे उसकी मिस्ट्रेस बनने को ऑफर दे रखा है। इसका मतलब या तो वो उसकी बीवी बनकर रहेगी या फिर उसकी मिस्ट्रेस।